गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जामुना तीरा वनचारी आयो राधा माधव कुंज बिहारी जायो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर जय ओम विष्णुवाद परमहंस प्रभुराजकाचार्य स्वामी गिरीशिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुवाद नित्यलापरिष भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जाय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाय। रामाचार शील हरिदास ठाकुर की जाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाय। निताय गौर हरि प्रमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से, सातवां स्कंद है, अध्याय 15, सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश, श्लोक संख्या 72 है। अहम् च गायन् तद्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतः गतः ज्ञात्वा विश्वश्रियः तता मे हेलनम् सेपु ओजसा याहि त्वं शुद्रताम् आसु नष्ट श्री कृतहेलना। अहम् च गायंस्तद्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो गता ज्ञात्वा विश्वसृजन्तन्मे हेलनम् सेपुरोजसा याहि त्वं शुद्रतामासु नष्ट श्रीकृत हेलना। अहम् च गायंस्तद्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो गता ज्ञात्वा विश्वसृजन्तन्मे हेलनम् सेपुरोजसा याहि त्वं शुद्रतामासु नष्ट श्रीकृत हेलना। अहम् च गायन्तं विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो गता ज्ञात्वा विश्वसृजन्तन्मे हेलनम् सेपुरोजसा याहि त्वं शुद्रतामासु नष्ट श्रीकृत हेलना।
Yeah.
मैं च तथा गायन श्री भगवान के महिमा का गान करने के बदले अन्य देवताओं का गायन करते हुए तद विद्वान गाने की कला में निपुण स्त्री भी स्त्रियों द्वारा परिवृत घिरा हुआ गतः वहां गया ज्ञात्वा उत्तम प्रकार जानते हुए विश्वसृजा प्रजापति जिन्हें ब्रह्मांड की व्यवस्था सौंपी गई थी तथा मेरे गायन की प्रवृत्ति में मेरी हेलरम उपेक्षा सेपु साप दे दिया ओजसा बड़े वेग से या ही बन जाओ त्वम तुम शुद्रताम शुद्र आसु शीघ्र नष्ट रहित श्री सौंदर्य कृत हेलना शिष्टाचार भंग करने के कारण श्री नारद ने आगे कहा अनुवाद तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद का श्रील प्रभुपाद की। श्री नारद मुनि ने आगे कहा उस उत्सव में बुलाए जाने पर मैं भी वहां गया। स्त्रियों से घिरे रहकर मैंने देवताओं की महिमा का संगीतात्मक गायन प्रारंभ किया। इसके कारण ब्रह्मांड की व्यवस्था के नियामक प्रजापतियों ने मुझे इन शब्दों में बलात् साप दे डाला। चूंकि तुमने अपराध किया है अतएव तुम तुरंत सौंदर्य से विहीन शूद्र बन जाओ। तात्पर्य कीर्तन के संबंध में शास्त्रों का कथन है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। मनुष्य को परमेश्वर का जस तथा उनके पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। स्पष्ट कहा गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। मनुष्य को भगवान श्री विष्णु का गुणगान करना चाहिए अन्य किसी देवता का नहीं। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं जो किसी देवता के नाम पर कीर्तन की कोई विधि निकाल लेते हैं। यह अपराध है। कीर्तन का अर्थ है परम भगवान का जसगान करना न कि किसी देवता का। कभी कभी व्यक्ति काली कीर्तन तथा शिव कीर्तन का निर्माण करते हैं और बड़े बड़े मायावादी सन्यासियों तक का कहना है कि कोई चाहे किसी नाम का कीर्तन करे उसे वही फल मिलेगा। किंतु यहां हम देखते हैं कि लाखों लाखों वर्ष पूर्व जब श्री नारद मुनि एक गंधर्व थे तो उन्होंने श्री भगवान के जस गान के आदेश का उपेक्षा की थी और वे स्त्रियों की संगति में प्रमत होकर कुछ उल्टा गाने लगे थे जिससे उन्हें शूद्र बनने का शाप दिया गया। उनका प्रथम अपराध यह था कि वे कामुक स्त्रियों के साथ संकीर्तन मंडली में गए और द्वितीय अपराध यह था कि उन्होंने सामान्य गीतों को जैसे कि सिनेमा गीतों को या ऐसे ही अन्य गीतों को संकीर्तन के बराबर समझा। इस अपराध हेतु उन्हें शूद्र बनने का शाप दिया गया। बहुत सुंदर तात्पर्य है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददातु संपदं देकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च रूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशा हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत ताकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा आप लोग आगे आ जाओ ताकि पीछे वालों के लिए जगह मिलेगा जब लास्ट में आएंगे। माता जी लोग आप भी आगे आ जाओ, दो मिनट और लगेगा। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की। तो यह प्रसंग जो है, इस प्रसंग का अब उपसंहार हो रहा है। यह राष्ट्रीय जग के समय महाराज युधिष्ठिर के यहाँ ये प्रसंग चल रहा है, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर नारद जी से प्रश्न किए थे और उनके प्रश्नों का उत्तर नारद जी दे रहे थे। एक महाजन युधिष्ठिर जिन्होंने प्रश्न किया, दूसरे महाजन नारद जी उसका उत्तर दे रहे थे। यहाँ पर तीन चीज देखने को मिलता है, एक सामान्य लोगों के लिए जो कि नारद जी उपदेश दिए, जो वर्णाश्रम धर्म का पहले निरूपण किए और वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करने के बाद सबके कर्तव्यों का बोध कराते हुए कहते हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी है, यदि वह मनुष्य है, पशु नहीं है तब, यदि वह मनुष्य है तो उसे सुसंस्कृत होना चाहिए, कल्चर्ड होना चाहिए। मनुष्य उसे कहते हैं जिसमें संस्कृति की प्रधानता हो। धर्म ही एक अधिको विशेष हो, धर्म विहीन पशु ही नराणाम। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये चार नियम का पालन करना और 16 माला जप करना हमको मनुष्य बनाता है, भक्त नहीं बनाता है, मनुष्य बनाता है। भक्त कैसे बनते हैं, ये भक्ति करना शुरू करते हैं। और भक्ति का विधि है जो नवधा भक्ति में प्रथम है, श्रवणम। तो जो मनुष्य है वही सुन सकता है, पशु सुनेगा, चार कुत्ता हला दो सुनेंगे, कुत्ते लोग बोय बोय करना शुरू करेंगे, मनुष्य ही सुन सकता है, पशु नहीं सुन सकते हैं। तो यहां पर इस अध्याय का बड़ा सुंदर नाम है, सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। ये उपदेश है उनके लिए जिनके पास कल्चर है, कल्चर लोगों के लिए उपदेश है। और सब करने के बाद में अंत में कल्चर लोगों के लिए कह रहे हैं, एतैर अन्येश्च वेदोक्तो वर्तमान स्वकर्ममी गृहे गृहे अपि यस्य गतिं यादात् राजन् तद्भक्ति भांगनर। कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कैसे? विदुक्त, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, विदुक्त स्वकर्म भी, अपने कर्म का पालन करें। सबके लिए कर्म है, प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ है गृहस्थ रहो, वानप्रस्थी है वानप्रस्थी रहो, लेकिन सबका अपना अपना कर्तव्य है, जिसका वर्णन पीछे नारद जी कर चुके हैं कि ब्रह्मचारियों कर्तव्य क्या है, गृहस्थों कर्तव्य क्या है। कहते स्वकर्म भी, स्वकर्म का दो अर्थ हो सकता है, एक होता है सुकर्म इति स्वकर्म, सु मतलब अच्छा कर्म, और सबसे अच्छा कर्म है वह है कृष्ण भक्ति कर्म। तो सबके लिए अच्छा कर्म है कृष्ण भक्ति करना, चाहे ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी और सन्यासी नरक में जा रहे हैं, गृहस्थ तो मजे मार रहे हैं। ये सबके लिए है, सुकर्म मतलब अच्छा कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म। और दूसरा अर्थ स्वकर्म, अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार सबका अलग अलग कर्म निर्धारित किया गया है। ब्रह्मचारी कर्म है ब्रह्मचारी करे, गृहस्थ कर्म है गृहस्थ करे। अब ब्रह्मचारी कर्म गृहस्थ करेगा, गृहस्थ कर्म ब्रह्मचारी करेगा तो खिचड़ी बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये स्वकर्म का दो अर्थ है, कृष्ण भावना भावित होते रहते हुए अपने अपने कर्मों को करें। कैसे करें? कहते हैं वेदोक्त वर्तमान, जैसा कि वेदों में शास्त्रों में वर्णन किया गया है, शास्त्रोक्त विधि से अपना अपना कर्म करें। नहीं तो भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं कि जो शास्त्र के विधि का पालन नहीं करता तो असुर है। यह स शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र के जो नियम कानून है उसका वो पालन नहीं करता है, मनमना करता है, कहते न स सिद्धिम वाप्नोति, उस सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, न सुखम न सुख को प्राप्त करता है, और न पराम गति न तो परम गति को। तो फिर कोई रोते हो भैया? जिसको खुश रहना है उसको चाहिए विदुक्त वर्तमान, जैसा कि शास्त्रों में निर्दिष्ट किया गया है उन आज्ञाओं का हम पालन करें। गृहेषु अपि यस्य गतिम ययायः, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गृहस्थ ही क्यों न हो, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर गृहस्थ थे और उन्होंने प्रश्न किया था, तो कहते हैं गृहेषु अपि अस्य गतिम यायान राजन, हे राजन आपने पूछा था प्रश्न, अब भले गृहस्थ ही क्यों न हो, वह भी व्यक्ति यदि परम पुरुषोत्तम तद भक्ति भाक न रह, यदि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर के वह भक्ति करता है, कृष्ण से अटैच रहता है, तो वह मनुष्य अपने परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति ही एकमात्र साधन है जिससे हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, और इसी बात को भगवान गीता में कहते हैं भक्त्यामाम अभिजानाति जावन जस अस्मि तत्वतः, जैसा मैं हूँ कोई जान सकता है तो मात्र भक्ति के द्वारा। तो भक्ति मार्ग ही वह मार्ग है जिससे अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं, बैक होम बैक टू गॉड है। तो ये तो महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर अब दे दिए। महाराज युधिष्ठिर जो प्रश्न किए थे समान लोग हम लोगों के लिए किए थे, तो हम लोगों के लिए उन्होंने कह दिया यहाँ पर नारद जी कि तीन चीज करना चाहिए। एक, शास्त्र में जो बात बताया गया है, शास्त्र दो प्रकार का होता है, एक तो ये शास्त्र है ग्रंथ भागवत और एक साधु महात्मा, पुरुष भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों शास्त्र हैं, एक चलता फिरता, दोनों चलते ही फिरते हैं लेकिन एक स्थिर रहता है एक चलता फिरता है। तो साधुओं का शास्त्र का आज्ञा पालन करना, ये पहला बात बताया गया है। दूसरा, अपने अपने कर्तव्यों में निष्ठ रहना, अपना अपना जो कर्म है उसी को करना, और अंततः कहते हैं कृष्ण का भक्त बनना, इस समान लोगों के लिए, तब वह व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता है। तीन काम, अपना कर्तव्य पालन करना और कर्तव्य के अनुसार जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है उसके अनुसार पालन करते हुए कृष्ण का भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। हम मानो युधिष्ठिर देख रहे थे तो नारद जी कहते हैं क्या देख रहे हो, तुम लोगों के लिए तो रास्ता खुला हुआ है। तो आए कश्लोक में कहते हैं यथा युजम निरपदेव दुस्तजा आपद गणात उत्तरमात्मा न प्रभु यत पाद पंकज उरेह सेवया भवान। आहार निर्मित दिय गज्ज कर्तुना, कहते आप लोग क्या कहना है, आप लोग तो नित्य निरंतर कृष्ण के शरणागत हैं और उनके कृपा से ही बड़े बड़े राजाओं को जो यहाँ पर वर्णन किया गया है वे दिग्गज राजा लोग थे, उन लोगों को आपने प्राप्त कर दिया और आप लोगों का तो भवबंधन छूट चुका है। तो ये पांडवों के लिए कहे, अब अपने लिए नारद जी कहते हैं, कहते अरे हमारा भी ऐसे ही कुछ हो गया था। इसमें भगवान के भक्ति के महिमा का गुणानुवाद कर रहे हैं। सामान्य लोग भी भक्ति करते हैं तो भवसागर से पार हो जाते हैं, पांडवों ने किया है वो पार हुए। कहते हैं मेरा ही देखिए ना, अहम पुरा भवन कश्चित गंधर्व वर्ण, मैं पूर्व काल में महाकल्प में मैं उपवर्ण उपवर्ण नाम का गंधर्व था और नामनम इते महाकल्पे गंधर्वाणाम सुसम्मत, उन गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था, सुसम्मत सम्मानित गंधर्व मैं था। नारद जी और उनके एक मित्र थे, मैं नाम बोल रहा हूं तुमरु एक गंधर्व थे, तुमरु और ये दोनों साथ में ही रहते थे। नारद जी जब पूर्व जन्म में गंधर्व थे तो देखने में बड़े सुंदर थे। सुंदरता कभी कभी काल भी बन जाता है यदि भगवान की सेवा में न लगाया जाए। तो वही अपना घटना बता रहे हैं नारद जी कि किस प्रकार से मैं शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर था, बड़ा आकर्षक था, और आकर्षक तो था ही सुंदर तो था ही, साथ साथ माला भी पहनता था, चंदन लगाता था, थोड़ा सेंट भी लगा लेता था, परफ्यूम लगा लेता था, ये भी उसमें आ जाता है ना, सुंदरता में ही आ जाता है। इस प्रकार मैं विषय वासनाओं में ग्रस्त होता चला गया। कहते हैं एक दिन की बात है, देवतागण कहते हैं एकदा देव सत्रे, एक सत्र और एक यज्ञ होता है, यज्ञ और सत्र में अंतर होता है। मैं कहा कि आगे आ जाओ, थोड़ा और आगे जाओ, पीछे अभी आ रहे हैं, अभी बस उन लोगों का आया तो आप लोग थोड़ा आ जाओ। तो यज्ञ जो होता है उस यज्ञ में जो जो पुरोहित, आप लोग आगे आ जाओ थोड़ा और आगे, जो यज्ञ में जो यजमान होता है यज्ञ का फल उस यजमान को मिलता है, और जो सत्र होता है सत्र में उसका फल सबको मिलता है। आप लोग याद रखना, यज्ञ में यज्ञ का फल उसी को मिलता है जो यज्ञ कराता है, जो यजमान होता है, और सत्र में उसका फल सबको मिलता है। तो ये भागवत कथा जो है ये लोग कुछ लोग लेते हैं ज्ञान यज्ञ ये सब, सत्र है, सबको इसका फल मिलता है। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषय स्वर्गाद कैसे है सत्र स्वर्गाय, वो भी सत्र हो रहा था। और वैसे ही बात यहाँ पर एकदा देव सत्रे, एक दिन देवता लोग इकट्ठित थे उनका सभा में और वो सत्र हो रहा था। तू गंधर्व अप्सरा गणा और वहां पर उपहूता विश्व श्रृंभी हरि गाथो उपगायने, हरि गाथो उपगायने। उस सत्र में क्या हो रहा था? अखंड हरि कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और नारद जी गाने में बड़े निपुण थे, देखने में बड़े सुंदर थे पूर्वजन्म में। तो यहां पर उपहात उपहूता, उनको बुलाया गया, उनको बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया कि आप भी यहाँ हरिनाम होने वाला है, आप भी गाओ आओ। गाने में निपुण थे ही, बड़े देखने में भी अच्छे थे। तब वहां पर हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया था, हरिनाम चल रहा था। अब नारद जी आए, नारद जी नहीं वो गंधर्व उपवर्ण उपवरहण नाम का गंधर्व थे, तो वे आए। और वे अकेले नहीं आए, कहते स्त्री भी परिवृतो गतः, स्त्रियों से घिरे हुए थे। अब एक जो सुंदर व्यक्ति होता है, अपोजिट सेक्स ऐसे भी उसको अट्रैक्ट करती है या वो अट्रैक्टेड होता है, और उसमें भी एक गाने वाला हो, एक गाने वाला हो तो और, जिसका अच्छा लय हो सुर हो, तो वैसे लोगों को थोड़ा बचना चाहिए। स्त्रियों में भक्ति की प्रधानता होती है, लेकिन वह भक्ति सेंटीमेंट से भरा पड़ा रहता है, भावुकतापूर्ण वो भक्ति होती है। आप देखो जहाँ भी कथा होता है वहाँ दो चार पुरुष लोग रहेंगे, और ज़्यादा कथा सुनने वाली कौन रहेगी? क्योंकि स्वाभाविक भक्ति है, भगवान ने दिया है उन लोगों में। तो इस प्रकार से हम लोगों को वास्तव में सतर्क रहना चाहिए। स्पेशली भगवान चैतन्य महाप्रभु के हम फॉलोअर हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए आए हैं। मैं देख रहा हूँ इस्कान में भी अब नारद मुनि वाला प्रथा शुरू हो गया है कि एक गाने वाला जाएगा और 20-25 माता जी साथ में जाएंगी, और क्या क्या कीर्तन होता है, क्या क्या होता है, इसे सीखना चाहिए। भागवतम का जो पन्ना है ये सिखला रहा है कि हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देने के लिए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग्य विद्या को सिखाने के लिए है। और चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा वैरागियों के लिए, वैरागी भाई ना करबो ग्राम वार्ता, ना सुनिबो ग्राम वार्ता, ना करबो सपने हूं स्त्री संभाषण। वैरागी वह है, तीन चीज वैरागी का पहचान है, ना करिबो ग्राम वार्ता, संसारिक बात नहीं करेंगे, ना सुनी वो ग्राम वार्ता, न तो संसारिक बात सुनेंगे। सपने हूं ना करो वो स्त्री संभाषण, स्वप्न में भी मैं स्त्री से संभाषण नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु इसको स्थापित करने के लिए जूनियर हरिदास को त्याग दिए, इसी को स्थापित करने के लिए। हम लोग उसी परंपरा के हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके गुरुजी जब उल्टा डंगा में कलकत्ता में थे, तो प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे और उनकी नवज्योति पत्नी थी साथ में। एक दिन मिलने के लिए आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से, और उसने कहा गुरुदेव मैं आपसे कुछ अकेला बात करना चाहती हूँ। उनने कहा कि नहीं, तुम्हें जो बात करना है सबके सामने कहो, अकेला क्या बात करने का। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्री और पुरुष जो हैं वो बटर और फायर के समान हैं। जब दोनों संग में आएंगे मक्खन और आग, तो मक्खन पिघलेगा ही। इसलिए हम लोगों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए। नारद जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं नारद जी, अपना उदाहरण दे रहे हैं कि भैया देखो मेरा गति क्या हुआ। हालांकि अच्छा हो गया नारद जी के लिए, ये जो श्राप हुआ नारद जी को, बल्कि अच्छा हो गया। तो दासी पुत्र बने और बाद में भक्ति वेदांतियों का उन पर कृपा प्राप्त हुआ तो नारद जी नारद बन गए। लेकिन हम लोग एक्सेप्शन नहीं है, मत कहना कि हमको भी PhD मिल जाएगा बाद में, हम भाई डॉक्टरेट बन जाएंगे, पढ़ना पड़ेगा। हम लोग उस कैटेगरी में नहीं है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि हमको भी श्राप ऐसे मिल जाएगा, चलो तो हम बन जाएंगे, पता नहीं और क्या श्राप मिलेगा। तो कहते अहम च गायंस तन विद्वान, ये कहते हैं कि वहां पर विद्वतों की सभ्यता थी, सभा थी, यहां सत्र हुआ था। और विद्वान किसे कहते हैं? जो कृष्ण का भक्त है, जो कृष्ण का भक्त है वह विद्वान है। और कृष्ण के भक्त जहां भी रहते हैं तो कृष्ण का ही गुणानुवाद करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहां पर गायन शब्द का अनुवाद किए हैं, कहते अहम च गायन तद विद्वान, वहां विद्वान लोग थे और विद्वानों के बीच में एक गान चल रहा था, यानी श्री भगवान के महिमा का गान करने के लिए वहां पर वो लोग थे। तो नारद जी कहते हैं मैं वहां पर आया, मेरा स्वागत स्वागत हुआ और उसके बाद में, तो स्त्रियों के बीच में था, तो जो स्त्रियों के बीच में होता है वो प्रायः स्त्रियों को संतुष्ट करने के लिए ही गाता है, ये आप लोग लिख लो, ये सत्य बात है, कोई कितना भी ना कहे। क्योंकि संग से गुण होता है और संग से गुण जाएगा, जैसा करेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए हम लोगों को। और जब तीसरा बात यह है, दूसरे के प्रसन्नता के लिए हम कुछ काम करेंगे तो उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते। कोई बच्चा रो रहा है, भाई बंद करो इसको, हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जा रही थी, हम लोग शिष्टाष्टक तो आजकल हम भूलते ही जा रहे हैं, केवल सुबह सुबह नए भक्त लोग पाठ कर लेते हैं शिष्टाष्टक का, बड़े सीनियर लोग बाहर जाकर जप करते हैं, उनको लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम समझते नहीं कि शिष्टाष्टक कितना पावरफुल है, एक एक शब्द, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है, आज देखा जाए तो ये सब हो रहा है, धनम जन्म सुंदरी में सब लगे हुए हैं, कहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो पहले था कि जो भी हम करेंगे गुरु और कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करेंगे, बस पीरियड। गुरु और कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो सेफ है। यदि गुरु और कृष्ण के प्रसन्नता के अलावा दूसरे व्यक्ति को मुग्ध करने के लिए, दूसरे व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो गाना ही क्यों ना हो, ये हरि नाम प्रभु जो है ये कोई सामान्य नहीं है। प्रभुपाद तात्पर्य में हरि नाम का गुणानुवाद किए हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण है, अभिन्नात्वा नाम नामिनः। जो मन है, मन को यदि शांत करना है, एक रास्ते पर ले जाना है, तो आप लोग हरि नाम का गान करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हरि नाम के गान में यदि कहीं कुछ चेंज हो जाएगा इधर से उधर, एक बार जयत स्वामी महाराज बॉम्बे में नाम के ऊपर प्रवचन कर रहे थे, वो थोड़ा हट कर था महाराज हैं, तो प्रवचन कर रहे थे कैसे हम लोग हट गए हैं। तो ये कहते हैं कि हम लोग हरि नाम करते हैं, नाम करते हैं, तो एक जो राग है कुछ समय के लिए करते हैं, बाद में फिर चेंज कर देते हैं दूसरा राग, फिर तीसरा, अलग अलग, क्या जरूरत है। यदि हरि नाम में प्रेम है तो एक बार यदि हरि नाम, प्रभुपाद जी के जितने भी आप सुनोगे टेप, हरे कृष्ण धुन आप लोगों ने सुना है ना, उसमें कितना प्रभुपाद जी चेंज किए हैं। ये कहीं है हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
बस एक ही टोन है ना, उससे क्या होता है कि मन पर उसका असर पड़ता है और मन शांति को प्राप्त करता है. स्लोली 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 उस नाम में जाता है. लेकिन बीच में थोड़ा दूसरा चेंज कर दिया तो मन डिस्टर्ब हो जाता है तुरंत, क्योंकि नया टून पकड़ना पड़ेगा उसको. तो मन कॉन्स्टेंट नहीं रह सकता है एक जगह, और मन तो चंचल है ही, और हम और नया नया टून डाल करके नया नया चंचलता उसमें उत्पन्न कर रहे हैं. मन को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं और फिर कहते हैं हम नाम जप करते हैं प्रेम के नहीं मिलता है. कैसे मिलेगा? श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दियत्नम कथमपि सुकृतम प्राणिनाम जत परम अमृत एकम जीवनम भूषणम मे. जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे. हे हरिनाम प्रभु, आप साक्षात मुरारी हैं. जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे. सबको आनंद देने के लिए हे मुरारी आप नाम के रूप में आए हैं. कदम विरमित त्याग दूंगा निज धर्म अपना धर्म विरमित निधर्म पूजा आदि यत्न जो कुछ भी मैं त्याग दूंगा. फिर कथापि सुकृतम प्राणिनाम जत तो फिर फूड फॉर लाइफ चलाना हॉस्पिटल खोलना ये सब तो कहना ही क्या है. कथापि सुकृतम प्राणिनाम जत प्राणियों के प्रति सुकृत काम हमारे भक्त लोग देखते हैं कोई आई कैंप चला रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है. कथापि सुकृतम प्राणिनाम जत क्यों परम अमृत एकम जीवनम भूषणम में जीवन के आभूषण हरिनाम प्रभु हैं. तो यदि नाम गाना है तो नाम और हम में हम दोनों के बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए. हम दोनों के बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए. मैं देखता हूं कि आजकल नाम गाते हैं तो कुछ लोग भगवान का फोटो रखकर गाते हैं, कुछ लोग हरे कृष्ण महामंत्र को कर करते हैं. ये सब बकवास है. कहां प्रभुपाद जी कहे हैं और किए हैं? मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है. यदि नाम जप करना है तो केवल नाम सुनो. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. और नहीं तो फोटो लेकर के जप कर रहे हो और राधा रानी का माला बड़ा अच्छा लग रहा है तो ये माला जो है वहीं पर रह जाएगा और मन कहां चला जाएगा? उस माले पर चला जाएगा. मन बड़ा चंचल है. अर्जुन कहते हैं चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथ. तो इसलिए नाम जप करना है तो एक ही चीज दूसरा चीज है वह है अपना नाम जपो और सुनो श्रवण और कीर्तन. यही पद्धति है, दूसरा पद्धति नहीं है. एक चीज और नया आ रहा है इस कान में, नित्यानंद चैतन्य है होता है ना. मंगल आरती में मैं देख रहा था, मैं तो बम्बे में बंद करा देता हूं. क्या है बकवास तुम लोग कर रहे हो? हमारा पद्धति है श्रवण और कीर्तन. यदि एक गा रहा है दूसरे को चाहिए सुनना. आज ही मैं गा रहा था प्रभुपाद जी के टून में श्री कृष्ण चैतन्य और पीछे थे चैतन्य नित्यानंद बोलने वाले, वो अपने टून में गा रहे थे. उनका अलग ही टून था, मतलब सुनते नहीं है लोग, सुन नहीं रहे हैं. और मैं नॉर्थ इंडिया में ज्यादा देख रहा हूं दिल्ली तरफ. ये सेंटीमेंट है चैतन्य नित्यानंद. नी वृंदावन वाले करते थे एटीज में भक्तिपाद प्रभुपाद, फिर जीबीसी को बंद कराना पड़ा. ब्रजर पर याद है ना आपको, वही फिर आ गया है. ये सब सेंटीमेंट है, कोई जरूरत नहीं है. हमारा संबंध केवल है कृष्ण नाम से और हमसे, बस और कुछ नहीं. तीसरा कुछ नहीं होना चाहिए. हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? कारण है कि हम प्रभुपाद जी का ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं और ना तो प्रभुपाद जी का हम टिप सुन रहे हैं। आप सुनो प्रभुपाद जी का लेक्चर, प्रभुपाद जी का कीर्तन सुनो, कहां है अब चैतन्य नित्यानंद है? कहीं है? कोई दिखाए तो हमको। फिर वैसे ही नया नया और आ रहा है, ये नया नया क्या जरूरत क्या है? इसका मतलब कि हम लोगों को टेस्ट नहीं उत्पन्न हो रहा है हरिनाम में। हम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं। यदि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करेंगे तो हम ये स्ट्रगल भी करेंगे तो कृष्ण हमारे साथ रहेंगे, और दूसरे को प्रसन्न करने के लिए करेंगे तो कृष्ण का ठीक भैया तो अपना काम कर, तुम कृष्ण के नाम में तो कृष्ण तुम्हारे काम में, और तुम अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में, उनको क्या लगा है? परंतु करते रहो, तू चाहता है नेम फेम ग्लोरी। आजकल मैं देख रहा हूं हरे कृष्ण महामंत्र गाकर लोग पैसा कमा रहे हैं, है ना, डिस्को डांस चला रहे हैं, क्या क्या चला रहे हैं, कौन कौन बैंड चला रहे हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र इसके लिए नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र का जो लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम देने के लिए है। ये नाम संकीर्तन जो है चैतन्य महाप्रभु प्रेमापमर्थो महान, परम प्रेम देने के लिए नाम है। नहीं तो ये सब और जितना है सब अपराध है। नाम जप कर सकते हो, बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तब ना पाए कृष्ण पदे प्रेमधान। नाम गा सकते हो, 10 लोगों से गवा सकते हो, लेकिन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं कर सकते हो, जो कि नाम का लक्ष्य है। तो नारद जी बहक गए, यहां पर बहक ही गए ना। एक तो उनको आमंत्रण किया गया था वहां पर जहां हरिनाम संकीर्तन हो रहा था, हरिनाम संकीर्तन करने के लिए आमंत्रित किया गया था, गलती कर दिए कि सब स्त्रियों से घिरे हुए आए, यहां सब सन्यासी लोग बैरागी लोग लोकपाल लोग बैठे हुए हैं, वो स्त्रियों के साथ मेरा मंडली लेकर के आए। और तीसरा बात कि वे उन स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए सिनेमा का गाना शुरू कर दिए। प्रभुपाद यहां पर कहते हैं ना, ये सिनेमा गीतों को सिनेमा का गाना, हम सिनेमा गाना तो वहां पर नहीं होगा, उस समय सिनेमा नहीं था, लेकिन कहने का मतलब कृष्ण से संबंधित गान वो नहीं था, दूसरे को प्रसन्न करने के लिए गाया गया वो गान था। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य कहे हैं। कीर्तन के संबंध में शास्त्रों कथन है श्रवण कीर्तन विष्णु। यदि कीर्तन करना है तो मात्र विष्णु का है। माया का एक नाम है नर्तकी, है? जो नाचती है और नचाती है, और नर्तकी को उल्टा करो तो क्या होगा? तो यदि माया को कंट्रोल में करना है तो हम लोगों को कीर्तन करना चाहिए। किसका कीर्तन? विष्णु, कृष्ण का, विष्णु का। लेकिन उसके पहले, कीर्तन से पहले इंपॉर्टेंट है श्रवणम, सुनना। पहले हम सुने तभी कीर्तन कर सकते हैं। जैसा सुनेंगे वैसा ही कीर्तन होगा। तो सुनना बहुत जरूरी है शुद्ध भक्त के मुखारविंद से। यदि प्रभुपाद जी का भजन सुने, वंदे हम श्री गुरु 66 गोस्वामी अष्टकम, कितना सुंदर है। आजकल तो बजता भी नहीं है, मंदिर में कल बजता है बस, आश्रम में इंदिरा का बनता, इंदिरा प्रभु का बजता जाए और किसी का बजता है, प्रभुपाद जी का बजता ही नहीं आजकल। पहले जमाने में 80s-90s में था कि सुबह से ही प्रभुपाद जी का शुरू हो जाता था। तो शुद्ध भक्त के द्वारा ये जो गाया गया जो है वो वातावरण को शुद्ध करेगा, हम लोगों को शुद्ध करेगा। तो आप सब भक्त लोग ब्रज में आए हो, जो यहाँ के हो तो ठीक है, जो यहाँ से जाने वाले हो तो ब्रज भाव को ले जाओ, प्रभुपाद जी के भाव को ले जाओ, शुद्धता को लेकर के सब लोग जाओ। अभी प्रभुपाद जी का बुक डिस्क्रिप्शन मैराथन आ रहा है, तो प्यूरिटी दी फोर्स, शुद्धता ही बल है, कौन कितना पुस्तक वितरण कर सकता है, इसको लेकर के जाओ यहाँ से। ये प्राप्त हो सकता है प्रभुपाद के द्वारा। तो हमें सुनना बहुत जरूरी है, हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करें, अध्ययन करना भी सुनना है प्रभुपाद जी का प्रवचन। जसोमती नंदन प्रभु कहा करते थे कि प्रभुपाद ने उनसे कहा था कि मैं पुस्तकों को लिखा नहीं हूं, मैं बोला हूं। तो ये प्रभुपाद जी का प्रवचन है, तो पढ़ोगे मतलब आप सुन रहे हो। तो प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़े, प्रभुपाद जी का टिप सुने, इतना प्रभुपाद जी परिश्रम कर कर्मों को दिए हैं। तो जस कृति जो होनी चाहिए केवल कृष्ण का है, देवताओं का नहीं। अल्पज्ञ लोग हैं और जिनके कृष्ण में निष्ठा नहीं है, मैं देखता हूं हमारे भक्त लोग भी कभी कभी जब शिवरात्रि आ जाता है तो नमो शिवाय ओम नमो शिवाय गाना शुरू कर देते हैं, पैसा बनाने के लिए मैं जानता हूं, लेकिन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वेश्यावृत्ति है। एकमात्र है कि राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जन्म मरण गति आर नाही मोर। मीरा भाई भी कहते हैं क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हम लोग इसको पालन करते थे, लेकिन आजकल सब खिचड़ी बनता जा रहा है डे बाय डे। सब लोग अपने अपने घर का अपना चम्मच और मसाला और अचार लेकर के आ जाते हैं। इसको त्यागो आप लोग, ये शुद्ध भक्त बनना है, कृष्ण भक्ति का आनंद प्राप्त करना है। ये तो आनंद का परछाई प्राप्त हम लोग कर रहे हैं, इमोशन प्राप्त कर रहे हैं। ये इमोशन है, डिवोशन नहीं है, डिवोशन बहुत दूर है। हम लोग अभी इमोशनल प्लेटफॉर्म पर, अभी श्रद्धा के प्लेटफॉर्म पर हैं। सुदृढ़ निश्चयता नहीं आया, विश्वास नहीं आया है अभी कृष्ण में, हमारा विश्वास नहीं है, केवल श्रद्धा है कृष्ण में। कल बेटा मर जाएगा तो क्या भक्ति करने से फायदा, बेटा मर गया, ये है श्रद्धा। लेकिन बेटा मर जाए फिर भी भक्ति होती रहे तो यह है विश्वास। तो विश्वास के प्लेटफॉर्म पर तभी आ सकते हैं जब शुद्ध रूप से श्रवण कीर्तन किया जाए। तब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात यहां पर कहे, किंतु यहां हम देखते हैं कि लाखों लाखों वर्ष पूर्व जब श्री नारद जी एक गंधर्व थे, तो उन्होंने श्री भगवान के जसगान के आदेश की उपेक्षा की थी और वे स्त्रियों के संगति में प्रमत्त होकर कुछ उल्टा गाने लगे थे, जिसे उन्हें शूद्र बनने का शाप दिया गया। उनका प्रथम अपराध यह था कि वह कामुक स्त्रियों के साथ संकीर्तन मंडली में गए। द्वितीय अपराध यह था कि उन्होंने समान गीतों को, जैसा कि सिनेमा गीतों को, ऐसे अन्य गीतों को संकीर्तन के बराबर समझा। और इन्हीं अपराध, ये अपराध है, तो उन साधुओं ने सोचा कि ये तो बड़ा अपराध कर रहा है। तो ज्ञात्वा विश्व सृजन तन में हेलनम सेपुर ओजसा, तब ये जो प्रजापति लोग थे उन्होंने देखा है तो हेलनम ये उपेक्षा कर रहा है, भगवान का नाम नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है। तब उन लोगों ने सेपु मतलब श्राप दिए उनको, ओजसा बड़े जोर से यानी डांट फटकार करके गुस्सा में श्राप दिए ओजसा कि जाओ याही तुम शुद्रताम आसु। इतना जोर से श्राप दिए, जाओ तुम मूर्ख कहीं का, बदमाश कहीं का, तुम शुद्रताम आसु, तुरंत शुद्र बन जाओ। ये नहीं कहे एक दो साल के बाद में, तुरंत अभी। नष्ट स्त्री, तुम्हें अभिमान है तुम्हारे सुंदरता पर, बहुत सुंदर हो, लड़कियां तुम्हारे पीछे रहती है, बड़ा अभिमान है। नष्ट स्त्री कृत हेलना, जिसमें तुम्हें बहुत अभिमान है, यह जो सौंदर्य जिसका जिसके अभिमान से तुम ये कार्य कर रहे हो वो सब खत्म हो जाए, क्योंकि तुम अवहेलना कर रहे हो। तो सुंदरता बड़ा खतरनाक है, एक अभिमान है। माता कुंती कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान अधापुमान, उसमें भी स्त्री है और यहां कहते नष्ट स्त्री, वही सुंदरता कहते हैं। तो इस प्रकार से नारद जी अपना बात बता रहे हैं, कि किस प्रकार से मैं शूद्र बना। और प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में कहते हैं उनके शूद्रत्व का दो कारण था। एक तो वे स्त्रियों के साथ में घिर कर करके गए थे, और दूसरा उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए संसारिक गीत गा रहे थे। तो ये दो चीज हम सब लोगों को ध्यान, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई हो, प्रभुपाद जी कहते हैं पुरुषों के लिए स्त्रियां काल है और स्त्रियों के लिए पुरुष काल है। इसीलिए समाज में दोनों को अलग अलग रखा गया है। लेकिन आज का समाज हिंजड़ों का समाज बनते जा रहा है, सब लोग एक साथ में मिल करके रहते हैं। ये समाज सांस्कृतिक समाज नहीं है, ये सुसंस्कृत मनुष्यों को उपदेश दिया गया है, संस्कृत लोगों के लिए, सिविलाइज लोगों के लिए। सिविलाइज लोग साथ में नहीं रहते थे। आप भागवतम में पढ़ोगे जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के गए गोकुल, तो वहां पर शब्द आया है जसोदा शयने, अन्यत्र आया है जसोदा भवने, यानी जसोदा जी का अलग शयन कक्ष था और नंद बाबा का अलग शयन कक्ष था। ये नहीं कि कहीं बेड पर दोनों सो रहे थे, ये कहीं घर में। तो आज संस्कृति डे बाय डे खत्म हो रही है, लेकिन प्रभुपाद जी वैदिक संस्कृति को स्थापित करने के लिए आए। तो आप लोग जितने भी इस्कान से संबंधित डिवोटी हैं उन लोगों को बहुत सीरियस होना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूँ पहले तो था फुल टाइम डिवोटी लोग थे, आजकल तो फुल टाइम कंग्रीगेशन लोग बढ़ते जा रहे हैं, अच्छा है। लेकिन कंग्रीगेशन डिवोटियों को ये सुसंस्कृत होना बहुत जरूरी है, सुसंस्कृत होना बहुत जरूरी है। जो भी हम कार्य करें भगवान के प्रसन्नता के लिए करें, किसी पुरुष के प्रसन्नता के लिए या किसी स्त्री के प्रसन्नता के लिए ये कार्य न करें। लक्ष्य होने चाहिए गुरु और कृष्ण का प्रसन्नता। और नारद जी वही गलती कर दिए। तो ये सब उदाहरण है हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, इसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और सीखना चाहिए, तब हमारी भक्ति प्रबल रूप से आगे बढ़ सकती है, तब हम भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं जो हरिनाम प्रभु का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और इसी जीवन में बहुत जीवन हम लोग बर्बाद कर चुके हैं, एक जीवन तो दे दें हम, एक जीवन में शुद्ध तरह से कृष्ण का नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और शुद्ध तरह से हरि का नाम लेंगे तो नाम का अर्थ होता है नमयति इति नाम। नमयति मतलब झुका देता है, जो लेने वाला होता है वो भी झुक जाता है और जिसका नाम ले आता है वो भी झुक जाता है। तो नाम का परिणाम क्या है? झुकना, हम लोग नम्र हो जाए और भगवान भी झुक जाए, हमारा भक्त हमको याद कर रहा है। नाम का लक्ष्य और कुछ भी नहीं है, नाम लेने का लक्ष्य भक्त बनाना, ये करना। आजकल हम लोग करते हैं दूसरे को भक्तारे, पर अपने तो भक्त बनो, दूसरे का चिंता कर रहे हैं अपने नहीं बन रहे हो, पहले अपने भक्त बनो। और अपने कैसे भक्त बनेंगे? ये सब पालन कर करके। तो ठीक है, अब समय तो हो गया, घड़ी का कांटा आगे बढ़ते जा रहा है, तो मैं यहीं समाप्त करूंगा। मोटा मोटी यहाँ पर नारद जी अपना बात बताए कि किस प्रकार से वे शूद्रत्व को प्राप्त किए, और दो चीज उनमें कमी थी। एक तो उनका सौंदर्य कारण बना, दूसरा साथ में स्त्रियां, और उन लोगों को खुश करने के लिए सिनेमा का गाना गाने लगे। तो ये थोड़ा आप लोग बचिएगा इससे, और तब हम सब लोग शुद्ध नाम को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? माइक दो भाई माता जी को, उधर बैठिए। प्रसाद है, कहाँ जा रहे हो? अब तो स्वीट राइस खा लिए हो। बैठो 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 बैठो, कहाँ जा रहे हो, बैठो चलो बैठो। ये भी एक तकलीफ है, कलयुग में थोड़ा तपस्या करो। बैठो बैठो चलो बैठो बैठो। माताजी लोग, ये माताजी लोग नहीं सुनने वाली है, कभी नहीं सुनेंगे, आखिर है माताजी लोग ना।
विदेशों में हरिनाम होता है और उसमें इतने स्लोली स्लोली स्टेप लेकर के नृत्य करते हैं, तो वो नृत्य और ज्यादा स्टेप भी नहीं बदलते हैं, वो बड़े ऐसे ऐसे।
आप विदेश कब गई थी?
यूट्यूब पर देखा।
हाँ, तो वही गड़बड़ है ना, गड़बड़ वही है ना। वो हाथी का दांत खाने का अलग होता है, दिखाने का अलग होता है। ये दिखाने वाला दांत है, चिंता मत करो। मैं अभी एक महीना देख करके आया अमेरिका में क्या हो रहा है, भक्ति दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अरे सीधे गाओ ना, प्रभुपाद जी कैसे गाते हैं वैसे गाओ ना, कहें कोई नया नौटंगी करने का, दुखों को दिखाने के लिए। ये यूट्यूब में अपना वो बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं लोग, अपना क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट बढ़ाने का। मैं सब पैसा भी मिलता है आजकल यूट्यूब पर, तो इसके पीछे मत पड़ो। सिंपल भागवतम पढ़ो ना, खत्म करो सब। और कोई प्रश्न? हाँ उधर दीजिए। हाँ, तो अतिथि को भी एक अपना मर्यादा होता है ना, अतिथि मर्यादा तोड़ेंगे तो डंडा भी मारेंगे लोग। मर्यादा होता है अतिथि का भी अपना मर्यादा होता है। और कोई प्रश्न? सबको अपने मर्यादा में रहना चाहिए।
अगर किसी का प्रोफेशन ऐसा है लाइफ में है कि यहाँ पे उसको कंसल्टिंग करनी है, कुछ करना है, तो उसको काम वार्ता मतलब जैसे होता है कुछ चीजों पे नॉलेज लेनी पड़ती है, न्यूज की लेनी पड़ती है,
आप इस अध्याय को पढ़ो, इसमें एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है, बल्कि इसके पहले वाले अध्याय में, अध्याय 14 में श्लोक संख्या 8 या 9 में है। एक सेकेंड, मैं पढ़ ही देता हूं आपके लिए। हाँ, मानव समाज में बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपने क्रियाकलापों की योजनाओं को अत्यंत सरल बनाए। यदि उसका मित्र, पुत्र, माता पिता, भाई या अन्य कोई कुछ सुझाव देता है तो उसे ऊपर ऊपर से मानते हुए यह कहना चाहिए हाँ ठीक है, किंतु अंदर से उसे दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि कहीं वह अपने जीवन को दुभर न बना ले, जिससे जीवन का प्रयोजन पूरा होने में रह जाए। तो ऊपर ऊपर से ठीक है, करना है, परिवार चलाना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको ही लक्ष्य मत मान लो। ज्ञातयः पित्रः पुत्रा भ्रातरः सुहृदो परे यद वदन्ति यद इच्छन्ति च अनुमोदेत निर्ममम्। गंभीरता से उसे ग्रहण मत करो, बस अनुमोदन कर दो, ठीक है कर रहे हैं क्या करेंगे, ठीक है टेक इट इजी। लेकिन फल कृष्ण को देते रहना, तब तब तकलीफ नहीं होगा। कर्मणे वादिका कर्मणे वास्ते आकारस्ते महाफले। और कोई प्रश्न? ये बहुत सुंदर अध्याय है, अध्याय 14 और 15। 14 जो है गृहस्थों को पढ़ना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था, गृहस्थम एताम पदवी विधिनाम जी न चांजसा, हे ऋषिवर हम घर गृहस्थ वाले हैं, विधिनाम जी न चांजसा, हजार झंझट है, आप बताओ कैसे हम शांति से रह सकते हैं। ठीक हम लोगों के लिए नारद जी ने ज्योतिष ने प्रश्न किया था, और तब उसका उत्तर देते हैं, गृहेशु अवस्थित राजन क्रिया कुरुण्यथोचित वासुदेव अर्पण साक्षात उपासतो महामुनि, शुरू करते हैं नारद जी उपदेश देना। तो सभी गृहस्थों को चाहिए अध्याय 14 पढ़ ले, और अध्याय 15 सबको पढ़ना चाहिए, ब्रह्मचारी हो गृहस्थ कोई हो, जो सिविलाइज अपने को मानना बनना चाहता है, सिविलाइज लोगों के लिए है 15वां अध्याय। ये 7वां स्कंध है, मैं यही पर शायद कहा था कि भागवत महापुराण में 2 स्कंध हैं, 7वां स्कंध और 10वां स्कंध, ये दोनों में संबंध है। एक में संबंध है, 7वां जो स्तंग है वो उति है, उतय कर्म वासना, कर्म करने की इच्छा, कर्म वासना, भोजन है लेकिन भूख नहीं है तो भूख कैसे लगे वो बताया, कर्म वासना क्या है वो बताया गया है। और 10वां स्कंध जो है वो निरोध है, यानी ये कर्म वासना कैसे सुख जाए, खत्म हो जाए, उसका वर्णन किया गया है। तो 7वें स्कंध में, पूरे 7वां स्कंध में प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन किया गया है शुरू से लेकर के अंत तक। ये भी हालांकि युधिष्ठिर महाराज के रास्ते में हो रहा है, लेकिन कथा हो रही है प्रहलाद महाराज के ही, प्रहलाद महाराज ये आ रहे हैं और अवधूत से दत्तात्रेय से मिले हैं, दत्तात्रेय ने जो वर्णाश्रम का वर्णन किए हैं ये सब वर्णन किया गया है। तो ये 7वां स्कंध और 10वां स्कंध, 7वां स्कंध कैसे हम गिरते हैं, 10वां स्कंध कैसे बाहर निकलते हैं, ये चीज है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना 7वां स्कंध और 10वां स्कंध, सब भागवतम अच्छा है लेकिन ये 2 स्कंध। उतय कर्म वासना, ये उति है कर्म वासना, संसार में है, कर्म है संसार है, हम लोग कर्म करते हैं, कर्म की वासना है हम लोगों में, लेकिन उस कर्म वासना को कैसे शुद्ध किया जाए वह जो है 10वां स्कंध बताया गया है। ऑलराइट, और कोई किसी को प्रश्न है? ठीक है, जय श्रील प्रभुपाद की जय, गंधराश्रीमद् भागवतम की जय।